आज है सोमवार तारीख 15 जून। दिन भर के साथ मैं निखिल रंजन। ललित मोदी को मदद मामले में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री की भूमिका पर भी उठाए सवाल।
कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी।
भारत प्रशासित कश्मीर में नहीं रुक रही हत्याएं, 3 हफ्ते में गई 6 लोगों की जान। FTII में नियुक्ति के विरोध से गजेंद्र चौहान हैरान।
बड़े दुख की बात है कि एक आदमी की काबिलियत जाने बगैर, उसकी परफॉर्मेंस जाने बगैर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया उसके ऊपर।
होंगी आपकी चिट्ठियां और खबरें खेल की भी, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। ललित मोदी वीजा विवाद मामले में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुषमा स्वराज को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ललित मोदी काले धन का प्रतीक हैं और प्रधानमंत्री मोदी की मदद कर रहे हैं। ग्रीस की सरकार ने कर्जदाताओं की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और इसी के साथ ब्रुसेल्स में ग्रीस और उसके अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के बीच बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। वहीं बेल्जियम के वित्त मंत्री ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि ग्रीस यूरोजोन से बाहर जाए, लेकिन ग्रीस का रवैया जैसा है उसका यूरोजोन से बाहर होना भी एक विकल्प हो सकता है। ग्रीस के सरकारी प्रवक्ता गैब्रियल साके लारिडिस ने बताया, हम पेंशन में कटौती नहीं करेंगे, मूल वस्तुओं पर वैट भी नहीं बढ़ाएंगे। इनसे कठोर कदम उठाने की दिशा में तेजी आ जाती। हमें 25 जनवरी को जनादेश मिला था, इसलिए चुनाव और जनादेश का फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिखता और इसका ये अर्थ भी नहीं है कि हम चुनाव से डरते हैं। ये थे ग्रीस के सरकारी प्रवक्ता गैब्रियल साके लारिडिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के सोपोर में हुई हत्याओं के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें आ रही हैं। मारे गए लोगों के पूर्व में चरमपंथी होने की बात सामने आई है, हालांकि उनमें से 2 टेलीकॉम ऑपरेटर बताए जाते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस उच्चाधिकारी ने बताया कि ये हत्याएं चरमपंथियों के 2 गुटों के बीच टकराव का नतीजा हो सकती हैं, लेकिन अलगाववादी गुट के लोग इन हत्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की अदालत में जज ने सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर को दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार करने में नाकाम रहने पर कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। ओमर अल बशीर न्यायिक रोक को खारिज करते हुए दक्षिण अफ्रीका से रवाना हो चुके हैं। जोहानिसबर्ग की एक अदालत में उनको गिरफ्तार कर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले करने के मामले में सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। वे अफ्रीकी यूनियन समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे। चाड के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि राजधानी इंजामेना में पुलिस कार्यालय पर बोको हराम के हमले में तकरीबन 23 लोग मारे गए हैं और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर सवार आत्मघाती हमलावरों ने पुलिस अकादमी और पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर विस्फोट किया। इंजामेना के इस इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। आज ये आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिली मदद पर राजनीति गर्मा गई है। ये मामला एक दिन पहले सामने आया, जिसके बाद सुषमा स्वराज पर विपक्षी पार्टियों का हमला तेज हो गया। बीजेपी ने सुषमा स्वराज का बचाव किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका हो सकती है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा,
देश के माननीय प्रधानमंत्री जो खुद विदेश मंत्रालय को चलाने के लिए मशहूर हैं और विदेश मंत्री उनके एक छोटे सहयोगी के तौर पर कार्य करती हैं, क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी। ललित मोदी का ना केवल माननीय सुषमा स्वराज जी से सीधा जुड़ाव, उनके परिवार से क्लाइंट काउंसिल रिलेशनशिप, उनके परिवार के सदस्यों से ईमेल्स का आदान प्रदान, उनके परिवार के सदस्यों को दाखला और दूसरी चीजों में मदद दिलवाने में साझेदारी थी, परंतु अब ऐसा भी लगता है कागजों और दस्तावेजों से कि श्री ललित मोदी के संबंध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह से भी हैं।
कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं और जवाब मांगा है। सवालों की ये फेहरिस्त रणदीप सुरजेवाला ने जारी की और पूछा,
वित्त मंत्रालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स विभाग को ये स्पष्ट करना चाहिए देश के सामने कि आज ललित मोदी जी को लेकर उनका क्या स्टैंड है और अब क्या वित्त मंत्रालय और भारत सरकार ललित मोदी को कानून का भगोड़ा मानती है या नहीं मानती। पूरे तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखे जाएं।
कांग्रेस ने अपने एक तरफ से जहां हमले तेज कर दिए हैं, दूसरी ओर बीजेपी इस मामले में अब चुप है। कल जरूर अमित शाह और राजनाथ सिंह ने इस पर पार्टी की ओर से बयान दिया, लेकिन आज उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। सुषमा स्वराज ने सोमवार सुबह भी ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने को विवाद से दूर रखने की कोशिश जरूर की, लेकिन सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है और दिल्ली में उनके सरकारी घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुनिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सुषमा स्वराज पर आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और व्यवसायी ललित मोदी को कुछ अहम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिलाने में मदद के आरोप हैं। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे, जिनकी सुनवाई के लिए ललित मोदी ब्रिटेन से भारत ही नहीं लौटे। सुषमा स्वराज पर इस बात के भी आरोप हैं कि उन्होंने ललित मोदी को ब्रिटेन से पुर्तगाल जाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के लिए कथित सिफारिश की। हालांकि खुद सुषमा स्वराज ने सफाई में ट्वीट यही किया था कि ललित मोदी को कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी का इलाज कराने पुर्तगाल जाना था, वे नहीं जा पा रहे थे, इसलिए मैंने मानवीय अधिकार पर उनकी मदद की थी। भारत से जाकर ब्रिटेन में शरण लेने के पहले ललित मोदी को भाजपा करीबी समझा जाता था। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की राजनीतिक संपादक अदिति फडणीस को लगता है कि सुषमा बहुत आवेश में काम करती हैं और शायद इसलिए ये सब कुछ हो गया हो।
इसमें कोई शक नहीं है कि ललित मोदी भाजपा से पहले भी जुड़े हुए थे और उन्होंने राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ काफी नए नए काम किए थे। बाद में आईपीएल में जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन सवाल इसका है कि सुषमा ने क्या किया जो कि गलत था। उन्होंने केवल एक चिट्ठी में लिखा और तब लिखा जबकि ललित मोदी का पासपोर्ट वापस हो गया था, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था।
विपक्ष ने सुषमा स्वराज को इस बात पर भी घेरा है कि ललित मोदी के लिए सिफारिश करके सुषमा ने परस्पर हितों के टकराव वाले नियम के साथ समझौता किया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक टीवी चैनल से कहा कि देश के हित में ये जवाब मिलना जरूरी है कि विदेश मंत्री ने ललित मोदी की मदद आखिर क्यों की। आरोप ये भी है कि सुषमा के पति स्वराज कौशल ललित मोदी के वकील रह चुके हैं और वर्तमान में उनकी बेटी बांसुरी कौशल मोदी की वकील हैं। ऐसे में विदेश मंत्री की हैसियत से सुषमा की तरफ से ललित मोदी की मदद हितों का टकराव बताया गया है। अदिति फडणीस को सुनिए।
देखिए, ये सवाल पहले भी उठ चुका है जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज में उनकी पत्नी ने कुछ निवेश किए थे, तो ये सवाल उस समय भी उठा था और फिर बाद में भी उठा था जब उनकी पत्नी ने कुछ ऐसे केसेस लिए थे जो कि जिनके खिलाफ वित्त मंत्रालय के दावे थे। मदन सिंह की पत्नी का एक केस था और भी इस तरह की केसेस थे। तो अब इसमें क्या करना चाहिए ये तो कहना बहुत मुश्किल है। कब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है और कब प्रोफेशनल इंटरेस्ट होता है ये भी कहना बहुत मुश्किल है।
ब्रितानी मीडिया में छपी कुछ खबरों में कहा गया है कि भारतीय मूल के ब्रितानी सांसद कीथ वाज ने भी कथित तौर से भारतीय विदेश मंत्री के नाम का सहारा ललित मोदी की मदद के लिए लिया। हालांकि अभी मामले पर सभी पक्षों की प्रतिक्रियाएं आनी बाकी हैं, लेकिन भारत में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सुषमा का इस्तीफा मांग लिया है।
मौजूदा विदेश मंत्री ने उन सारे आदेशों को ओवररूल कर दिया ताकि ललित मोदी जी पर देश के कानून के मुताबिक मुकदमा ना चलाया जा सके।
फिलहाल जो हालात हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि सुषमा स्वराज के अब तक के बेहतरीन राजनीतिक सफर में ये शायद सबसे बड़ी चुनौती साबित हो। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
भारत प्रशासित कश्मीर के उत्तरी कस्बा सोपोर में पूर्व चरमपंथियों की रहस्यमय हत्याओं के बाद तनाव फैला है। 3 हफ्तों में 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 4 पूर्व चरमपंथी थे। अलगावादियों ने इन हत्याओं के लिए भारत की खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से इस्तीफे की मांग की है। इन हत्याओं से कश्मीर में डर का माहौल है। अधिक जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
सेबों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मशहूर उत्तरी कश्मीर के सोपोर कस्बे में लोगों ने रहस्यमयी हत्याओं के विरोध में किसी कॉल के बिना ही हड़ताल की। इस बीच कुछ जगहों पर बीजेपी समर्थन वाली मुफ्ती सईद की सरकार के विरोध में भी प्रदर्शन किए गए। लोगों में इन घटनाओं के कारण डर फैल गया है। सोपोर के नागरिकों का कहना है कि शाम ढले ही यहां सन्नाटा छा जा रहा है।
गुमनाम कातिलों का सिलसिला तो पिछले साल से चल रहा है, जब पहले सरपंचों को मारा गया तो अब इस साल वर्कर्स एक्टिविस्ट्स का हलाक किए जा रहे हैं। एक दहशत का माहौल बन चुका है, शाम से ही लोग घरों के अंदर बैठ जाते हैं और फौज का ये गश्त स्टार्ट हो जाता है।
कोई भी नहीं आ रहा है सामने, आप देखिए खुद कितना मुश्किल हो गया है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, पेशेंट्स के लिए। यहाँ पे शाम से घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं हम लोग, पता नहीं चलता है मिलिटेंट कौन है, सिविलियन कौन है, कौन ये सब कर रहा है।
भयानक माहौल पैदा हो गया है कि मगरिब की नमाज के बाद यहाँ पूरा सन्नाटा छा जाता है, जिसकी वजह से कहीं ऐसे वाकत भी आए कि जब कहीं मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने भी नहीं गए, मगरिब की नमाज जो है या इशा की नमाज।
पुलिस का कहना है कि आज सुबह संदिग्ध चरमपंथियों ने एजाज अहमद ऋषि नामी पूर्व चरमपंथी की गोली मारकर हत्या कर दी। 24 घंटों में ये इस तरह की दूसरी हत्या थी। कल सुबह मेराजद्दीन नाम के पूर्व चरमपंथी की हत्या भी इसी तरह की गई। एक हफ्ते में संदिग्ध लोगों द्वारा हत्या की 4 घटनाएं सोपोर में हुई हैं। इससे पहले लश्कर इस्लाम नाम के एक चरमपंथी घुट ने मोबाइल फोन के टॉवर्स न हटाने पर 2 लोगों की हत्या कर दी, लेकिन अलगाववादियों और चरमपंथी घुट्टू ने लश्कर इस्लाम को भारतीय एजेंसियों का अभिनव बताया। भिन्न भिन्न अलगाववादियों ने इस मामले पर साझी प्रतिक्रिया जताई है और बुधवार को जम्मू कश्मीर में बंद का आह्वान किया गया है। शुक्रवार को सोपोर की तरफ जनता मार्च का भी आह्वान किया गया है। पुलिस के महानिदेशक के राजेंद्र ने इस मामले में जांच की घोषणा करके दावा किया है कि कुछ दिनों में ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। ताहम पुलिस का ये भी कहना है कि सोपोर में चरमपंथियों के बीच तनाव है और इस वजह से ये एक गैंग वॉर भी बन गया है। कश्मीर के हालात में ये नया पहलू क्या दर्शाता है, मैंने पूछा पत्रकार और विश्लेषक गौहर गिलानी से।
लेकिन पुलिस के लिए भी एक सवाल है कि एक तरफ से वो कह रहे हैं कि 130 शिद्दत पसंद मौजूद हैं वादी में, पूरी वादी में, और वो भी ऑन द रन है, तो अगर ये सूरत हाल है तो वो इस तरह की टारगेट किलिंग्स जो हो रही हैं वो कैसे हो रही है। फिर जो वो सारे दावे हैं कि हमने मिलिटेंट्स को काबू कर लिया है, तो एक बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये जो अहम 2 सवाल है, क्यों और कौन, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है।
इन घटनाओं के बाद अलग अलग गुटों में बटे अलगाववादी भी एकजुट हो गए हैं। सईद अली गिलानी, यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक ने साझी प्रतिक्रिया में बुधवार को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है और शुक्रवार को सोपोर की तरफ जनता मार्च की अपील की है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
भारत प्रशासित कश्मीर में हो रही इन रहस्यमय हत्याओं के पीछे जम्मू कश्मीर की प्रमुख विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रक्षा मंत्री के उस बयान को जिम्मेदार ठहराया है जिसमें उन्होंने कांटे से कांटा निकालने की बात कही थी। पार्टी के नेता मुस्तफा कमाल ने कहा,
डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो बयान दिया श्रीनगर में कि मिलिटेंटों को खत्म करने के लिए वो मिलिटेंट खड़े करेंगे अपनी तरफ से, और ये इसी का नतीजा है। किलिंग्स कोई नई बात नहीं है, किलिंग्स बराबर 1999 से यहाँ हो रही हैं, और बीच में जो सलाहकार नए प्राइम मिनिस्टर के हैं उनके बारे में जो खुलासा हुआ है एक चैनल पे, उन्होंने जो रोल यहाँ अदा किया है कुकपरे को बनाने में, या जिसको कहते हैं इखवानीज गवर्नमेंट मिलिटेंट्स, वही आज सलाहकार हैं प्राइम मिनिस्टर के।
वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर लंबे समय से भारत प्रशासित कश्मीर को देखते समझते और उनके बारे में लिखते रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो सकती है वजह इन हत्याओं की।
देखिए, ये बहुत ही मिस्टीरियस, जो ये किलिंग्स हो रही हैं बहुत ही मिस्टीरियस है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनिशियल रिपोर्ट्स तो ये आए थे कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का कोई स्प्लिंटर ग्रुप है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हट गया है, वो अलग से ऑपरेट कर रहा है, उसका हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप के साथ झगड़ा चल रहा है, उसी ग्रुप ने किलिंग शुरू तो ये इस बात पे हुआ था कि मोबाइल नेटवर्क को रोक लगाने की बात हुई थी। एक नए ग्रुप के नाम से लश्कर इस्लाम करके उन्होंने पोस्टर्स लगाए, उन्होंने मोबाइल टावर वालों को मारा। उसके बाद से जब गिलानी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं यहाँ पे चेयरमैन, उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो नया ग्रुप आया है लश्कर इस्लाम, ये इंडियन एजेंसियों की पैदावार है, उन्होंने बनाया है, ये कोई मिलिटेंट ग्रुप है नहीं। उसके बाद से रिएक्शनरी तौर पे जो गिलानी के करीब लोग माने जाते हैं उनका मर्डर होना शुरू हो गया। जो शुरुआत हुई वो गिलानी के तहरीक हुर्रियत का एक जो वहां का लोकल एक उनका एक्टिविस्ट था उसको मारा गया। उसके बाद से अब मिस्टीरियसली ये किलिंग्स फैल रही हैं सोपोर एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में।
रक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि कांटे से कांटा निकालने के लिए, इन हत्याओं का इस बयान से कोई संबंध जोड़ पाते हैं आप?
जोड़ वैसे डायरेक्टली कोई संबंध जुड़ नहीं सकता है, लेकिन जहां तक देखा जाए कि जब रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट आया था कि मिलिटेंट्स को इस्तेमाल किया जाएगा मिलिटेंट्स को मारने के लिए या कांटे से कांटा निकालने की बात हुई थी, उस वक्त यहाँ के जो भी उलगावादी ग्रुप है उन्होंने बड़ा उस पर रिएक्ट किया था, क्योंकि एक तजुर्बा हो चुका है ये बहुत पहले, जिसको हम इखवान इरा बोलते हैं, जब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स फील्ड में थे जिनको आर्मी सपोर्ट करती थी, पुलिस सपोर्ट करती थी, उनने बहुत मिलिटेंट्स को मारा, तो वो एक इरा रहा है। इसलिए यहाँ के लोग जानते हैं कि वैसा हो सकता है कि मिलिटेंट के जरिए मिलिटेंट को मारा गया है यहाँ पे। तो रक्षा मंत्री के बयान के बाद से ये शुरू हो गई एक्टिविटीज, इसलिए कुछ लोग दो और दो चार करके इसको उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि ये जो लोग इस वक्त किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं, जो किलिंग्स कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर खुद भी मिलिटेंट हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के रहे हैं, लेकिन अब इनका कुछ हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप जो पाकिस्तान में है सैयद सलाहुद्दीन, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आई है, तो ये अपनी रिट असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
मोबाइल सेवा का विरोध करने की बात हुई और फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसे लोगों की हत्या हुई जो लोग मोबाइल के कारोबार से जुड़े थे, तो ये मोबाइल के विरोध की क्या वजह है?
हाँ, उसमें जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये थी कि वहां पे सोपोर टाउन में मिलिटेंट्स ने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ डिवाइसेस, कुछ मोबाइल टावर्स पे फिक्स किए थे, शायद उससे, क्योंकि उनका रابطہ रहता है सरहद के पार पाकिस्तान में, पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर में उनका रابطہ रहता है, तो उनने कुछ डिवाइसेस कुछ मोबाइल टावर्स पे लगाए थे, जो मिलिटेंटों को की जुबानी जो कहा जा रहा है कि वो डिवाइसेस चोरी हो गए, लेकिन बाद में पुलिस ने यह ऑन किया कि उन्होंने कुछ डिवाइसेस रिकवर किए हैं कुछ मोबाइल टावर्स से।
श्रीनगर से वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर इस बात का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर में हो रही हत्याओं की वजह क्या हो सकती है। बीबीसी रेडियो पर दिन भर आप सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ, bbchindi.com और मोबाइल पर भी। और अब बात FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जहां के छात्रों ने टीवी कलाकार गजेंद्र चौहान को संस्थान की प्रशासकीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के विरोध में अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया है। छात्रों ने आज अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया और परिसर में प्रशासनिक कार्यालयों को बंद करा दिया। छात्रों के इस विरोध पर गजेंद्र चौहान की क्या प्रतिक्रिया है? बीबीसी संवाददाता वैभव दीवान ने दिल्ली में उनसे बातचीत की है।
महाभारत के युधिष्ठिर अब FTII के चेयरमैन मेरे साथ हैं इस समय, गजेंद्र चौहान जी। सर, आपके इस अपॉइंटमेंट पर इतना बवाल क्यों मच गया है?
बवाल भी बिल्कुल महाभारत के जैसा नहीं, ऐसा है कि मैं इस बवाल से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी शुरू होने से पहले ही उसका विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसे से सवालत उठ खड़े हुए हैं कि जिनकी कोई अहमियत नहीं है, जिनका कोई स्टेटस नहीं है। बड़े दुख की बात है कि एक आदमी की काबिलियत जाने बगैर, उसकी परफॉर्मेंस जाने बगैर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया उसके ऊपर। मेरा कहना यह है कि मेरे पास काफ़ी अनुभव है फिल्म इंडस्ट्री का, मेरे पास पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं इन दोनों चीज़ों का मिश्रण करके FTII के विषय में एक नया सपना देखता हूँ। स्टूडेंट्स की जितनी भी मांगे हैं उनको बैठ के सुना जाए, उनसे बातचीत की जाए। किसी भी विरोध का हल तभी निकल सकता है जब हम एक दूसरे को सुने।
आपने कहा कि उन मांगों को आप एड्रेस करना चाहते हैं, उनकी अभी सबसे पहली मांग जो FTII के गेट के बाहर है वो यही है, रिजाइन एंड लीव। ऐसा कड़ा रवैया बच्चों का आपके आने से पहले ही है, आपके रहते तो क्या पता वो क्लास में घुसे भी ना।
नहीं, क्या रिजाइन एंड लीव सॉल्यूशन है इसका? आपने काम देखा नहीं और उसके लिए आदेश पास कर दिया कि रिजाइन एंड लीव, ये तो कोई हल नहीं हुआ। इसके बाद क्या, फिर कोई एक नया व्यक्ति आएगा जिसको आप सरकार अपॉइंट करे, उसके बावजूद फिर क्या, फिर विरोधाभास होगा? ये क्या गारंटी है कि जो नया व्यक्ति आएगा उसका विरोधाभास नहीं होगा? तो विरोधाभास सिर्फ विरोधाभास करने के लिए किया जा रहा है, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आपने हत्या हुई नहीं और आपने उसे सजा भी सुना दी।
पर अगर बड़े बड़े नाम जैसा वो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, गुलजार साहब हैं और अपना श्याम बेनेगल साहब हैं, इनके अपॉइंटमेंट से आपके अपॉइंटमेंट को बहुत आंका जा रहा है।
क्या आने वाले समय में छात्र ये फैसला करेंगे कि उसका गुरु कौन हो, उसका टीचर कौन हो, उसे कौन रूल करे? क्या इस देश में ये नया सिस्टम आने वाला है जो ऑथराइज्ड अथॉरिटीज़ हैं, जो अपॉइंटमेंट्स करती हैं, उन्होंने बहुत सारा स्क्रूटनाइज करके ये फैसला लिया होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझ में काबिलियत देखी होगी। अब स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, छात्र तो बहुत सारे हैं, हर एक की अपनी एक पसंद होगी, तो क्या वो बहुत सारे चेयरमैन अपॉइंट करने पड़ेंगे? तो मेरा कहना ये है कि अगर अथॉरिटीज़ ने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है, आप उसे काम का मौका दीजिए।
गजेंद्र चौहान, जिन्हें FTII का प्रशासनिक निदेशक नियुक्त किया गया है, और उनसे बात की थी हमारे सहयोगी वैभव दीवान ने। और अब वक्त हो चला है उस चीज़ का जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, यानी कि आपकी चिट्ठियाँ,
आपकी राय। स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का नमस्कार।
और नमस्कार मोहनलाल शर्मा का भी।
मोहनलाल शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से माफी मांगता हूँ, इतनी ढेर सारी चिट्ठियाँ हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किसे मैं लूँ और किसे छोड़ दूँ। बहरहाल आपके पास तो ईमेल भी मैं देख रहा हूँ,
तो शुरुआत कीजिए। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। ये पत्र है डॉक्टर सत्य कमलाकर का, श्री काकुलम आंध्र प्रदेश से लिखते हैं। मेहंदी हसन साहब से साक्षात्कार जो था वो हृदय को छूने वाला रहा, पुनः प्रसारण करके आपने बड़ी मेहरबानी की। इन्होंने एक शिकायत भी लिखी।
जी जी जी,
शिकायत लिखी कि आदेश कुमार गुप्त ने रोहन बोपन्ना को अपने जोड़ीदार के साथ खेले गए मैच में तीसरे सेट का स्कोर 10-7 बताया, जबकि वो 10-8 होना चाहिए।
अरे साहब, डॉक्टर सत्य कमलाकर जी, आप श्री काकुलम से चिट्ठी लिखते हैं, दक्षिण भारत से, वहाँ से हिंदी में चिट्ठी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। पत्र लिखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मर्सिडीज कप की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें स्कोर तो 10-7 ही था। आपने ये ज़रूर लिखा है कि ये 10-8 होना चाहिए था, लेकिन हमने इसकी जांच की और स्कोर 10-7 ही था।
ये अगला मेल मेरे पास है दीपचंद्र मौलिकी का, रामनगर नैनीताल से। ये लिखते हैं कि 12 जून को दिन भर में प्रस्तुत इंदिरा बनाम राजनारायण के मामले पर विवेचना अच्छी लगी।
आप मुस्कुरा रहे हैं मोहनलाल जी।
किताबों में कई बार पढ़ने से जो बात, जो जानकारी समझ में नहीं आई थी, वो इस रिपोर्ट से समझ में आ गई। रिपोर्ट के लिए आपका साधुवाद।
तो ये आपका साधुवाद है, क्योंकि विवेचना आपने प्रस्तुत की थी और तारीफ आप ही की हो रही है। दीपचंद्र मौलेखी की तरह ही गोलपहाड़ी जमशेदपुर से जंग बहादुर सिंह ने भी लिखा है कि अरसे बाद रेहान फजल की जगह मोहनलाल शर्मा ने विवेचना प्रस्तुत की। इन्होंने आगे उस दौर की राजनीति पर विस्तृत टिप्पणी की है, लेकिन यहाँ जाहिर सी बात है समय कम है तो पूरी टिप्पणी तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन
मैं धन्यवाद तो करिए।
हाँ, धन्यवाद आप कर दें। और जंग बहादुर सिंह हमारे पुराने श्रोता हैं, टिप्पणी कर लगातार करते रहते हैं,
तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अगला मेल लेता हूं। ये अगला मेल है सुरेंद्रनाथ सिंह का, नागांव असम से। इन्हें राजस्थान में 5 दलितों की हत्या पर जुबैर अहमद की रिपोर्ट बेहद पसंद आई। आगे ये जानना चाहते हैं कि BBC कितनी भाषाओं में प्रसारण करती है, और साथ ही एक सुझाव भी दिया। वो सुझाव ये है कि BBC में उत्तर पूर्व भारत की खबरें भी शामिल किया करें।
ये बात तो बिल्कुल सही है सुरेंद्रनाथ सिंह जी। BBC वर्ल्ड सर्विस, पहले आपका पहले सवाल का जवाब दे दें कि BBC वर्ल्ड सर्विस का प्रसारण 29 भाषाओं में होता है। जहाँ तक उत्तर पूर्व की खबरों की बात है, तो हम ये मानते हैं कि उन्हें और ज्यादा समय मिलना चाहिए। आपके सुझाव पर हम गौर जरूर करेंगे।
राजेश, मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां ऐसी हैं जो अब डाक से आई हैं।
मैं देख रहा हूं, बहुत ढेर सारी चिट्ठियां हैं और हम तो सबको ले भी नहीं पाएंगे, लेकिन
बात कर लेते हैं। जी, ओम प्रकाश अग्निहोत्री हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, सादत नगर हरदोई से इन्होंने हमें चिट्ठी,
उत्तर प्रदेश।
ये कहते हैं कि BBC प्रसारण के 75 साल पूरे होने पर आपने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उसको सुनने के बाद मैं पत्र लिखने के लिए विवश हो गया। जिस दिन चंद्रयान चंद्रमा पर गया था, उसी दिन मैंने BBC सुनना शुरू किया था। रत्नाकर भारती, ओमकार नाथ श्रीवास्तव, परवेज आलम और जोशी जी जैसे प्रसारकों ने हृदय में,
ये गौरी शंकर जोशी की बात कर रहे होंगे, राजेश जोशी की नहीं, मुझे यकीन है
जी,
क्योंकि मैं तब नहीं था।
उनकी जो याद है वो आज भी जिंदा है, लेकिन अभी एक शिकायत है कि ये जो खिचड़ी भाषा है, ये इनको अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं कि आज जब आप केवल धन्यवाद बोलते हैं और बाकी शेष प्रसारक शुक्रिया के दीवानी हैं। मैंने BBC को खूब पत्र लिखे, अब इच्छा नहीं होती शिकायतों पर कुछ ध्यान न देकर सिर्फ लीपा पोती
नगर। इनका नाम क्या है, जरा नाम दोबारा बताएं।
ओम प्रकाश अग्निहोत्री साहब।
तो अग्निहोत्री साहब, ओम प्रकाश जी, भाषा में घालमेल तो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो आम जबान है, जो आम लोग बोलते हैं, वैसी भाषा हम बोलना चाहते हैं, दुरूह क्लिष्ट भाषा हम नहीं बोलना चाहते हैं। हो सकता है आप हमारी बात से असहमत हों, लेकिन सोचिएगा, गौर कीजिएगा और फिर चिट्ठी लिखिएगा।
एक पत्र और है डॉक्टर बी एम गोएदानी का, होशंगाबाद से पिपरिया मध्य प्रदेश से लिखते हैं। ये कहते हैं कि 78 साल के हैं, 78 साल का प्राणी हूँ।
अच्छा, ये लिखा है इन्होंने।
इन्होंने ये लिखा है और कहा कि ये पुराने समय से हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, विश्व भारती कार्यक्रम सुनते थे, अब जब नए कार्यक्रम वापस आ गए हैं घटना चक्र और विश्व
जरूर
भारती
कुछ आलोचना की गंध आ रही है मुझे।
इन्होंने इन्होंने कहा है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू
बॉटल।
अच्छा, आपको नहीं लगता?
मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि 78 साल की उम्र में आप बीबीसी हिंदी रेडियो के कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आलोचना, आपके सुझाव सिर माथे, लेकिन कुछ हमारी सीमाएं हैं जिनको हमें उम्मीद है कि आप समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि समय कम है, तो चलते चलते श्रोताओं को चिट्ठी लिखने का पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
चिट्ठियों के बाद अब बारी है खेल के खबरों की, और आदेश कुमार गुप्त जी खेल खबरों को लेकर के, खेल की खबरों को लेकर के स्टूडियो में आ चुके हैं। आदेश जी, बताइए आज क्या क्या है खेल की दुनिया में।
जी देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच फतुल्ला में खेला गया जो एकमात्र टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रॉ हुआ, लेकिन इसके बावजूद दोनों टीमों को कम से कम एक एक पारी तो खेलने को मिली। मैच समाप्त होने के बाद पत्रकारों के जवाब देते हुए विराट कोहली ने अपनी कप्तानी की खासियतों का जिक्र किया। वैसे उन्होंने इस बात पर जोरदार चुटकी ली जब उनसे पूछा गया कि मैच से पहले बांग्लादेश लगातार कह रहा था कि पाकिस्तान के बाद अब हम भारत को कड़ी चुनौती देंगे।
सर, एड कैंपेन है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? जैसे मैंने बोला, हम इस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और एडिलेड में जब मैंने पहला टेस्ट मैच में कैप्टनसी करी थी तो मेरा यही सोचना तब भी था कि हम अग्रेसिव खेलें और अपने आप को चांस दें गेम जीतने का, और मज़ा उसी तरह क्रिकेट खेलने में आता है। मुझे लगता है एज ए टीम, स्पेशली जब हम फील्डिंग करते हैं, तो वो इंटेंसिटी और वो एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ही टाइम है जब 11 लोग एक साथ फील्ड में होते हैं, तो वो टीम का मतलब असली जो है वो उस टाइम समझ आता है और उस टाइम फील होता है पूरी यूनिट में। तो वो एक हमारी एक टीम में हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि इंटेंसिटी फील्ड में हमेशा यू नो मेंटेन रहनी चाहिए।
वहीं अगर क्रिकेट में खिलाड़ियों की रैंकिंग की बात की जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट के ड्रॉ रहने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में मुरली विजय 20वें और शिखर धवन 45वें पायदान पर पहुंच गए हैं। धवन को 15 स्थान का फायदा हुआ। अजिंक्य रहाणे 22वें और विराट कोहली 11वें पायदान पर हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के आर अश्विन 12वें पायदान पर हैं। उधर गत चैंपियन जर्मनी, अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स ने हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल में पहले 3 स्थानों पर रहते हुए अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। जर्मनी ने फाइनल में मेजबान अर्जेंटीना को 4-1 से हराया, वहीं नीदरलैंड्स ने कनाडा को 6-0 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया। उधर टेनिस के कोर्ट पर भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा WTA युगल रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड के मार्टिना हिंगिस दूसरे स्थान पर हैं। महिला एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन के रूप में अपने टेनिस करियर का 20वां खिताब जीतने वाली अमेरिका की सेरेना विलियम्स पहले पायदान पर है, जबकि रूस की मारिया शारापोवा 2 स्थान के नुकसान के साथ 4थे पायदान पर पहुँच गई हैं। पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले स्थान पर बने हुए हैं।
धन्यवाद आदेश कुमार गुप्त जी खेल समाचारों के लिए। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख विश्व समाचार।
ललित मोदी वीजा विवाद मामले में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुषमा स्वराज को बर्खास्त कर देना चाहिए। ग्रीस की सरकार ने कर्जदाताओं की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और इसी के साथ ब्रुसेल्स में ग्रीस और उसके अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के बीच बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। भारत प्रशासित कश्मीर के सोपोर में हुई हत्याओं के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें आ रही हैं। मारे गए लोगों के पूर्व में चरमपंथी होने की बात सामने आई है, हालांकि उनमें से 2 टेलीकॉम ऑपरेटर बताए जाते हैं। जोहानिसबर्ग की अदालत में जज ने सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर को दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार करने में नाकाम रहने पर सरकार की निंदा करते हुए कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। आज के दिन भर में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी रात 9:30 बजे घटनाचक्र में। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। सभी साथियों के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।